ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णा, सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। हमारे पिछले 3 बुधवारों से हम बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्लोक 4 अध्याय का ले रहे हैं, जहां भगवान अब अपने अवतरण के विषय में अगले श्लोक में बताने वाले हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वता। परंतु उससे पहले भगवान ने इन 2 श्लोकों में यदा यदा ही धर्मस्य, जो हमने हमारे 7 सिटिंग में उसकी चर्चा की थी, और ये श्लोक परित्राणाय साधु नाम, जिसमें भगवान और थोड़ी गहराई में जाकर अपने अवतरण के विषय में बता रहे हैं। तो आज 4 भाग, अंतिम भाग होगा आज का इस श्लोक का। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। तो केवल हम यहां से शुरुआत करते हैं, पिछले श्लोक से क्या संबंध था, एक रिकैप, भगवान कब और क्यों अवतार लेते हैं। श्लोक क्रमांक 7 में भगवान ने बताया, और आज के श्लोक में भगवान अपने अवतरण के पश्चात फिर क्या करते हैं। तो पिछले बुधवार अर्थात जो भी हमारी पिछली सिटिंग, उसमें भाग 3 में हमने क्या चर्चा की, एक क्विक रिकैप उसका हम ले लेते हैं। तो यदि आपको याद होगा, दुष्कृति शब्द की व्याख्या हमने समझी, विनाश शब्द की व्याख्या, और भगवान द्वारा दुष्टों का उद्धार। तो दुष्कृति शब्द ये 2 शब्दों से बना है, दुह और कृति, दुख अथवा कष्ट, और कृति का अर्थ है देने वाला अथवा उत्पन्न कराने वाला। तो हमारे आचार्यों ने दुष्कृति शब्द या जो दुष्कृति हैं उनकी परिभाषा इस प्रकार से भी दी है कि जो माध्यम बनते हैं भगवान के आंदोलन में बाधा बनने के, वो हो सकता है कि डायरेक्टली व्यक्तिगत रूप से नहीं करते हों, परंतु यदि माध्यम भी बन जाते हैं तो यहां पर हमारे आचार्य कहते हैं कि वो दुष्कृति है, उत्पन्न कराने वाले भी, उत्पन्न करने वाले भी और कराने वाले। तो वह व्यक्ति जो साधुओं को दुख पहुंचाए अथवा तंग करे, तो आज के श्लोक में विशेष रूप से क्योंकि भगवान ने साधुओं का वर्णन किया है, परित्राणाय साधूनां, तो डायरेक्टली आज के श्लोक में संबंध साधुओं से है दुष्कृतियों का, कि जो साधु और भगवान के भक्त हैं उनके प्रयासों में, उनके क्रियाओं में और भगवान के आंदोलन में जो तकलीफ पहुंचाते हैं वो हैं दुष्कृति। तो हिरण्यकशिपु का उदाहरण हमने पिछली बार लिया था, कैसे हिरण्यकशिपु उसने न केवल अनगिनत साधुओं को और भगवान के आंदोलन में उसने बाधा लाई, बल्कि उसके स्वयं का पुत्र प्रह्लाद, जो कि साधुओं में सर्वश्रेष्ठ रहा, प्रह्लाद एक महाजन जो रहे, मारने पर उतारू हो गया हिरण्यकशिपु। और प्रह्लाद महाराज का अपराध क्या था? एक वैष्णव प्रह्लाद थे, भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे, ये उनका अपराध, इसको अपराध मान रहा था हिरण्यकशिपु। तो इसलिए दुष्कृति हिरण्यकशिपु। फिर हमने चर्चा की चतुर्भुज विष्णु के जो चार चिन्ह, दो चिन्ह राक्षसों के लिए और दो चिन्ह भक्तों के लिए, साधुओं के लिए। तो भगवान हालांकि अपने चारों चिन्हों से, शंख चक्र गदा पद्म, ये चार चिन्ह भगवान के यहां पर आप देखोगे, तो इन चारों चिन्हों का इस्तेमाल कर भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, परंतु उनके अंदर भी विश्लेषण कर बताया गया है कि दो वो कैसे साधुओं की प्रगति के लिए है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और दो राक्षसों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि वो केवल वही भाषा समझ पाते हैं। इसलिए फिर हमने इस प्राणी का उदाहरण लिया था कि भगवान कई बार अपने भक्तों की रक्षा कुछ इस प्रकार से करते हैं कि बाहरी दृष्टिकोण से हमें समझ में नहीं आता, जैसे कि ये जिराफ, जैसे उसका शिशु पैदा होता है, पैदा होते सो जो मां है वो लात मारना शुरू करती, वो खड़े होने की कोशिश करता है शिशु, लात मारना शुरू करती है मां, क्योंकि तुरंत मां उसको सिखाना चाहती है कि तुम अपने दोनों पैर तो नहीं करेंगे, चारों पैर, अपने चारों पैरों पर कैसे तुम खड़े हो जाओ, ताकि जो और खूंखार जानवर हैं वो तुम पर प्रहार न कर सके। इसलिए माया देवी और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों जिस प्रकार से कार्य करते हैं, कि हमने एक वेटर का उदाहरण लिया था कि एक वेटर आपको मुस्कुराते हुए आपको जो अच्छा लगता है परोस कर देता है, परंतु कब तक? जब तक कि उसकी ड्यूटी चल रही है, उसकी ड्यूटी पूरी हुई, रात के 12 बजे उसके घर जाओ, कोई मुस्कुराहट नहीं दिखाई देगी, उल्टा कुछ दिखाई देगा। और मां हो सकता है कि जो पकवान आपके पसंदीदा हो वो नहीं खिलाए बल्कि दलिया खिलाए, थप्पड़ मारकर, प्रेम कहां पर दिखता है? थप्पड़ में प्रेम दिख रहा है। तो हमने ये दोनों की चर्चा की थी कि मैच्योरिटी भगवान की कृपा को समझने में कहां दिखती है, व्हेन यू सी द स्लैब बिहाइंड माया देवी स्माइल एंड व्हेन यू सी स्माइल बिहाइंड कृष्णाज। तो हमारे जीवन में एक भक्त होने के नाते कई बार हमें तैयार रहना चाहिए भगवान थप्पड़ भी क्यों ना मारें, और अपने भक्तों को बहुत अलग अलग तरीके से भगवान मारते हैं थप्पड़, क्योंकि हमें जो ऑर्गेनिक दलिया है वो पसंद नहीं होता, तो इसलिए कई बार भगवान को थप्पड़ मारना पड़ता है, और वो जो हमारे आध्यात्मिक सेहत के लिए अनुकूल है वही भगवान हमें प्रदान कर कर देते हैं। तो भगवान की सुरक्षा, आज के श्लोक से ये पॉइंट का संबंध क्या था कि भगवान की सुरक्षा हमें गुरु साधु शास्त्र के आधार पर समझनी, न कि मेरे टर्म्स पर भगवान मुझे सुरक्षित रखें, नहीं, गुरु साधु शास्त्र के टर्म्स पर भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर हमने ये उदाहरण लिया था कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की सुरक्षा कौन कौन से लेवल पर करते, तो हमने उसके स्वरूप देखे, अब उसका स्तर। तो ये उदाहरण हमने लिया था कि यदि किसी को तैरना नहीं आता और कूद जा रहा है वो किसी जलाशय में, तो इसके हमने चार स्तर देखे थे भगवान की सुरक्षा के। आई जंप इन अ पूल एंड नॉट नो स्विमिंग, हाउ कृष्णा विल सेव, कृष्णा फर्स्ट विल वॉर्न मी नॉट टू जंप। तो ये जो उदाहरण है इसको हमको ट्रांसलेट करना है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, जब हम अज्ञान में बिना जानते हुए हम कुछ कार्य करना प्रारंभ करते हैं और कहीं पर हमें पता है कि इसमें खतरा है। इस भौतिक संसार में खतरा तो पग पग पर है, परंतु जब अज्ञानवश हम किसी कार्य में लगते हैं, इस मनुष्य योनि में इतने कर्म हम बचपन से लेके मरणोपरांत करते रहते हैं, तो बहुत खतरा मोल ले रहे हैं हम इस संसार में, क्योंकि जो भी कर्म हम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड तुरंत होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो इसलिए भगवान सबसे पहले हम कूदे न, ऐसा खतरा मोल न लें, उसका वार्निंग देते, परंतु बहुत से वो वार्निंग पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, परंतु फिर मुंह फेर लेते हैं। तो भगवान फिर किसी को भेजते हैं, कूद गया वो, अब उसको बोला था तेरे को तैरना नहीं आता, मत कूद, वो गहरा है जलाशय, मगरमच्छ भी है उसमें, फिर भी कूद गया और फिर हाथ ऊपर कर याचना कर रहा है भगवान से कि आप बचाओ, जैसे द्रौपदी को आपने बचाया मुझे भी बचाओ। कृष्णा सेकेंडली, सेकेंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कृष्णा सेंड्स। फिर वो भी यदि नहीं हमारे लिए मुनासिब, तो हो सकता है कि भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में आ जाए हमें बचाने के लिए। हमको लग रहा होगा कि हाँ ये यही तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और बहुत से लोग इस बात को लेकर वो मंदिर नहीं आना चाहते या भक्ति नहीं करना चाहते या गीता नहीं पढ़ना चाहते कि भगवान पर्सनली क्यों नहीं आके सुनाते। अब होता क्या है कि कईयों के अंदर, विशेष रूप से कलयुग में, उनको बहाने चाहिए होते हैं गीता नहीं खोलने के, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान जो हैं वो आने तो वाले हैं नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी औकात ही नहीं, अंदर जानते हैं लेकिन बोलते नहीं, तो चलो मेरे लिए, मेरे पास एक बहाना होगा दूसरों को बताने के लिए कि कैसे मैं भक्ति में नहीं लग सकता, क्योंकि पर्सनली भगवान आकर मुझे देख नहीं रहे। फाइनली ये सबसे महत्वपूर्ण है, भगवान सिखा देंगे कैसे तैरना है। अब देखिए हम लोग ये जो तैरना सीखना नहीं चाहते, मतलब खुद भक्ति में प्रगति कैसे करें अपने प्रयासों से, वो नहीं चाहते, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो परित्राणाय साधु नाम श्लोक है ये लिटरली मेरे ऊपर लागू होना चाहिए। यदि मैं अपना सुबह का समय दे रहा हूं ये भगवान को, जो कि बहुत बड़ा त्याग है कलयुग में, सुबह का समय जप करने के लिए, पूजा करने के लिए, हफ्ते में एक बार यहां पर आके उनकी गीता सुनता हूं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बैठना पड़ता है, इतना जटिल ये ग्रंथ है उसको समझ रहा हूं, फिर बाद में वो बोलते हैं चार नियम, वो सब भी पालन करना, उसकी भी कोशिश कर रहा हूं मैं, घर के अंदर ऑल्टर, टीवी को साइड में कर दिया, भगवान को बीच में लगाया, इतना सब, तो फिर कुछ तो उनकी तरफ से पर्सनली रेसिप्रोकेशन। लेकिन हम ये नहीं समझते कि भगवान जब हमें इस संसार में कैसे एक भक्त को जीना चाहिए, जैसे कैसे किसी को तैरना चाहिए ताकि वो अपने आप को, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, सुना है ना आप लोगों ने, तो इसकी हमने चर्चा विस्तार से की थी। और फिर विनाश शब्द जो भगवान ने इस्तेमाल किया है, विशेष रूप से समाप्त करना, दुष्टों को विशेष रूप से भगवान समाप्त करते हैं, तो ये विशेष रूप से समाप्त करने का अर्थ क्या है, उसके लिए हमें दुष्कृताम ये शब्द समझना होगा जो हमने समझा था। दुष्कृताम का अर्थ है दुष्टता, तो विनाशाय च दुष्कृताम, मैं दुष्टों की दुष्टता का विनाश करता हूं। ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का परित्राण है भगवान का, बहुत ही विशेष प्रकार का उद्धार है भगवान का, कि राक्षसों की जो दुष्टता है, दुष्कृतियों की जो दुष्टता है, उसको भगवान दूर करते हैं और उसके द्वारा उसे न केवल मुक्त करते हैं बल्कि शुद्ध भक्त बना देते। तो हमने एंगर मैनेजमेंट के हमारे प्रेजेंटेशन का एक मुद्दा लिया था इसके संदर्भ में, कि हम इसमें सिखाते हैं इशू बेस्ड एंगर होता है, पर्सन बेस्ड एंगर होता है। तो भगवान भी यही कह रहे हैं कि जब मैं दुष्कृतियों का उद्धार करता हूं तो मैं उस दुष्कृति को मारता नहीं, उसके अंदर की दुष्टता को मारता हूं। तो हमने डॉक्टर का भी उदाहरण लिया था, गुड डॉक्टर किल्स ओनली द डिजीज नॉट द पेशेंट, वी आर टॉकिंग ऑफ गुड डॉक्टर्स। और फिर जीसस क्राइस्ट ने जो कहा, बहुत ही फेमस उनका स्टेटमेंट, हेट द सिन नॉट द सिनर। परंतु भगवान श्री कृष्ण इन तीनों के परे जाकर उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे दुष्कृतियों का उद्धार किया कि उन्होंने उनसे द्वेष, ईर्ष्या, ये सब तो दूर की बात है, उन सब से परे जाकर भगवान ने इन राक्षसों को, इन दुष्कृतियों को अपने धाम में, कईयों को तो पार्षद बना दिया भगवान, जैसे कि पुतना। यह हमने अपना अंतिम उदाहरण लिया था पिछली बार, कि पुतना को भगवान ने अपने माता का स्तर दे दिया, जो भगवान को मारने आए थी जब भगवान केवल 6 दिन के थे। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम, इसलिए श्रीमद् भागवत में यह प्रश्न पूछा गया है कि भगवान श्री कृष्ण से दयालु और कौन हो सकता है, कौन है ऐसा आराध्य व्यक्ति किसी के जीवन में जो जिसको मारने आए उसको माता का स्तर दे दे। कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। तो अब हमारे आज के चर्चा का विषय इस प्रकार से रहेंगे, अब अंतिम चरण है इस श्लोक का, जिसमें हम धर्म संस्थापना और युगे युगे शब्दों की व्याख्या समझेंगे। शिल प्रभुपाद के अनुसार इस्कॉन संस्था के 7 उद्देश्य, तो आप लोगों को लग रहा होगा अचानक ये इस्कॉन के 7 उद्देश्य कहां से आ गए, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान ने indirectly International Society for Krishna Consciousness ISKCON की भविष्यवाणी कर दी. कब? 5000 वर्ष पहले. जानना चाहेंगे आप लोग? तो सबसे पहले धर्म संस्थापना एवं युगे युगे, ये दो जो टर्म्स भगवान ने इस्तेमाल किए हैं आज के श्लोक में, तो यहां पर आप पढ़ सकते हो भगवान स्थान समय एवं परिस्थिति के अनुसार धर्म की संस्थापना करते हैं. अब हरेक युग जो है वो अपने आप में दूसरे युग से विभिन्न है. सत्युग नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पर सत्यता है, जहां पर धर्म स्वाभाविक रूप से लोग पालन करते हैं. तो सत्युग में जहां स्वाभाविक रूप से धर्म का पालन होता है, वहां पर भी भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं. क्योंकि कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं सत्युग में भी जो धर्म का विनाश करने के लिए उतारू हो जाते हैं और अधार्मिक होते हैं. फिर त्रेता, फिर द्वापर और ये जो कलयुग. तो क्योंकि हरेक युग का स्वरूप अलग अलग है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, उस युग के निवासी अलग हैं, तो इसलिए भगवान को स्थान परिस्थिति के अनुसार भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आना होता. इसलिए जब कई बार दूसरे धर्म वाले ये प्रश्न पूछते हैं एक चुनौती के रूप में कि आपके हिंदू धर्म में इतने भगवानों की क्या जरूरत है, या इतने अलग अलग रूप में आपके ये भगवान क्यों अवतार लेते हैं, आज का श्लोक एक उत्तर है उस चुनौती का. जैसे सरकार, अब हमारी सरकार जो है वो विभिन्न उनके विभागों से जो जनता है देश की उसके देखरेख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी प्रगति के लिए कार्यरत है. और आप देखोगे कि वही सरकार एक जेल का डिपार्टमेंट खोलती है, वही सरकार विद्यालय भी खोलती है, वही सरकार अस्पताल भी खोल रही है, वही सरकार जनता के विभिन्न प्रकार से उस जनता को सही तरीके से उस देश में वो जी सके कानून का पालन करते हुए. यदि हम कानून की तुलना धर्म से करें तो कानून का पालन कराने के लिए सरकार को कितने विभाग खोलने पड़ते हैं, और सबके अलग अलग कानून हैं. लॉ बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो सबके अलग अलग, आपको अगर घर भी बनाना है तो उसका एक कानून, गाड़ी चलानी है उसका एक कानून है, आपको कुछ खरीदना है उसका कुछ कानून है, उसके पीछे टैक्स इत्यादि क्या कुछ नहीं है. तो हरेक हमारे इस जीवन के हरेक पहलू के पीछे यदि सरकार कोई ना कोई कानून लागू कर दी है, तो फिर भगवान की जो सरकार है क्यों नहीं हमारे यहां पर. तो अभी मान लो कि भारत की सरकार है, तो भारत की सरकार का जो कानून है वो भारतीयों के लिए है जो मनुष्य योनि में है ना. कानून किस पर लागू है? हम मनुष्यों पर. यदि जानवर, अभी जानवर देखिए, कानून के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग के ऊपर जो इतने बंधन हैं वो तो मुक्त घूम रहे हैं, कोई उनके ऊपर कानून नहीं. अभी जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे, रेड लाइट, आपको गाड़ी रोकनी है और आपके बगल में कुत्ता जो है आपको मुस्कुराते हुए जाकर ठेंगा दिखाकर जा रहा है, मैं जा रहा हूं कर ले जो करना है, ट्रैफिक पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस, आपने कुत्ते को देख के आप भी आगे बढ़े, ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया आपको, आप बोलो उसको क्यों नहीं पकड़ा, उसको क्यों नहीं पकड़ा। जैसे हमारे एक भारतीय गए थे ब्रिटेन में, तो उनको प्रश्न पूछा गया, क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि भारत में अधिकांश लोगों को तैरना नहीं आता, वहां पर बचपन से सबको तैरना आता है, तो वहां पर एक मान्यता है कि भारतीयों को ज्यादा तैरना नहीं आता पानी में। तो उसने पूछा, यू नो हाउ टू स्विम, तो हमारे जो गए थे उन्होंने कहा, नो आई डोंट नो हाउ टू स्विम, इन आर कंट्री इवन अ डॉग नोज हाउ टू स्विम। तो इनका उत्तर क्या, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड डॉग। तो कानून और धर्म, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सरकार, भारत सरकार के जो बंधन है वो क्या है कि वो कानून केवल लागू किसके ऊपर है, मनुष्यों के ऊपर, परंतु भगवान की जो सरकार है उसके जो कानून है वो लागू होते हैं सबके ऊपर, क्योंकि भगवान का उत्तरदायित्व सभी योनियों के ऊपर है, और सभी योनि 84 लाख योनियों में, इसलिए हम यदि देखें एक एक अवतार भगवान के, केवल हम तो कुछ 10 अवतार के विषय में जानते हैं, उन 10 अवतारों में भी देखें तो भगवान ने जो अलग अलग योनियों में या उन योनियों को लेके भगवान ने जो अवतार लिए, जैसे कि मत्स्य अवतार। अब अपने पुराणों में यह बताया गया है कि भगवान कोई भी योनि में अब अवतार लेते हैं, तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि मैं केवल मनुष्यों के उद्धार के लिए ही चिंता में नहीं रहता, बल्कि उन योनियों में भी भगवान उन योनियों में जाकर उनकी तरह व्यवहार कर उनको भी उद्धार का मौका देते हैं या अज्ञात सुकृति देते हैं। तो भगवान का कूर्म अवतार हुआ, उसके पश्चात फिर भगवान का वराह अवतार, ये सारे अवतार जिनके विषय में हम इतनी बार सुने हैं, कहे हैं, इनकी जयंती मनाते हैं, तो क्या समझना आज के श्लोक के संदर्भ में ये सारे अवतारों को, धर्म संस्थापना युगे युगे, कि हर एक युग में देश काल पात्र के अनुसार, परिस्थिति स्थान के अनुसार भगवान, समय के अनुसार भगवान अवतरित होते हैं, जैसे कि नरसिंह अवतार। अब देखिए ये अवतार पिछले अवतार से आप इनकी तुलना नहीं कर सकते, इसलिए ये सारे जो भगवान के अवतार हैं ये अपने आप में विशेष हैं, और ये अवतार की दूसरे अवतार के साथ हम तुलना कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि दोनों विष्णु तत्व हैं, भगवान ही हैं। परंतु क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो भी इतने सारे अवतार या दो अवतार को यदि हम ले तो उनका प्रयोजन अलग, उनका पर्पज अलग था। अभी यही नरसिंह अवतार, और हम देखेंगे कि दश अवतार में एक अवतार है भगवान बुद्ध, दोनों ऑपोजिट। यहां पर आप देखो जिस मुद्रा में नरसिंह देव प्रतीत होते हैं, और आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि भगवान बुद्ध कौन सी मुद्रा में, दोनों पोल्स अपार्ट है। क्योंकि प्रयोजन अलग है, इसलिए भगवान कह रहे हैं युगे युगे धर्म संस्थापना। वामन अवतार, अपने हर एक अवतार की भगवान की एक विशेष कहानी है, एक विशेष प्रयोजन भगवान सिद्ध करने के लिए अवतरित होते हैं। और कितने प्रयोजन और कितने अवतार बताए गए हैं, जैसे समुद्र में जो लहरें एक के बाद एक आती हैं जाती रहती हैं, आती हैं जाती रहती हैं, कोई गिन नहीं सकता, वैसे ही भगवान के कितने अनगिनत अवतार हैं। और एक हरेक अवतार, इतने अनगिनत अवतारों में से हरेक अवतार के पीछे कोई पर्पज है, बिना कारण नहीं कि ऐसे ही भगवान को मन आया कि चलो बहुत हो गया, थोड़ा बोर हो रहे हैं वैकुंठ धाम में, थोड़ा बोर हो रहे हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ एक नया अवतार ऐसे ही बोरियत दूर करने के लिए। नहीं, हर एक अवतार के पीछे भगवान का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन? धर्म संस्थापना। परशुराम अवतार बहुत ही विशेष अवतार रहे वो, और फिर फेमस राम अवतार भगवान श्री राम, बलराम अवतार जैसे हम बोल रहे थे कि बुद्ध। अब ये एक बहुत ही विशेष अवतार भगवान के हुए, जहां पर भगवान ने आपातकालीन जो धर्म है उसकी संस्थापना की। आपातकालीन धर्म क्या होता है? इमरजेंसी रिलीजन। एक उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टैंडर्ड भगवान का तरीका है धर्म संस्थापन करने का, उससे थोड़ा अलग भगवान बुद्ध जो आए, उन्होंने कह दिया कि वेदों को साइड में करो, जहां पर सारे धर्म बताए गए हैं, वेद धर्म का पूरा ज्ञान, उन्होंने कह दिया कि उसको अलग करो। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पर ब्राह्मण इस कलयुग की शुरुआत में धर्म के नाम पर दुरुपयोग कर पशु हत्या और मांसाहार प्रारंभ कर दिए थे। इसलिए इन्होंने कौन से धर्म की संस्थापना की? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मो। अब यही भगवान बुद्ध जो बोले कि आप वेदों को बहिष्कृत करो और मैं जो बोल रहा हूं उसका पालन करो, तो ये परिस्थिति स्थान और समय के अनुसार ये धर्म की संस्थापना उन्होंने की। तो उदाहरण ये कि कोई चोर चोरी कर भाग रहा है, कार में है, पुलिस उसके पीछे, चोर की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस पीछे पीछे, अब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अपने वैन में, पुलिस ने देखा ट्रैफिक रूल्स के अनुसार स्पीड लिमिट उस रोड की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर जा रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको, आप अगर पुलिस होंगे तो आप अभी कौन सा रूल फॉलो करोगे? ट्रैफिक रूल, वो भी पुलिस का ही है, कि उसको ब्रेक कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड पर आपकी वैन चलाकर चोर को पकड़ोगे? तो यहां पर इसको कहते हैं आपातकालीन धर्म, कि पुलिस को अपना ही धर्म या अपना ही कानून तोड़ना पड़ता है आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में लाने के। तो भगवान बुद्ध, कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कैसा कि उन्होंने वेदों को बहिष्कृत किया और वो जो धर्म की संस्थापना किए बाकी अवतारों के अनुसार अलग क्यों? आपातकालीन धर्म। और वही भगवान विष्णु आगे अब कलयुग में आएंगे, इसके पहले आपने जो चित्र देखा इतने सौम्य वपु अहिंसा परमो धर्म, अब कल्कि जो आने वाले हैं कलयुग के अंत में तलवार निकाले हुए एक ही काम करने वाले, कोई लेक्चरबाजी नहीं होने वाली, कोई आकर वो सत्संग कीर्तन भजन लेक्चर वगैरह ये सब कोई, क्योंकि कोई उस स्थिति में होगा नहीं समझने के। तो कल्कि अवतार का एक ही कार्य होगा, तलवार निकालो काम शुरू करो। तो वो तलवार के द्वारा, शस्त्र के द्वारा वो धर्म की संस्थापना करने वाले। तो युगे युगे, इससे हमें समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कि भगवान जो स्वयं साक्षात कृष्ण जो अवतारी हैं, वो इतने विभिन्न रूपों में अलग अलग युगों में क्यों अवतरित होते हैं या क्यों पेश आते हैं। अब जो ये मुद्दा आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान ने यहां पर इस्कॉन के विषय में भविष्यवाणी कैसे कर दी। हाँ, ये बहुत ही एक अचरज की बात लग रही होगी आप लोगों को कि ये पॉइंट कहां से आया। तो उसके समझने के लिए उसको हमें पहले जो ये शब्द है संस्थापना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको समझना होगा। तो इसका विच्छेदन यदि हम करें तो सम्यक रूप से स्थापना, उसको कहते हैं संस्थापना। सम्यक अर्थात अच्छी प्रकार एवं पूर्ण रूपेण, और स्थापना का अर्थ है निश्चित करना। तो संस्थापना, इंस्टॉलेशन जिसको बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर, या आजकल स्मार्टफोन में होते हैं ना एप्स, आप कोई एप्स डाउनलोड कर रहे हो तो उसके अंदर वो आता है इंस्टॉल इट। क्या है वो? इंस्टॉलेशन है क्या? संस्थापना, केवल स्थापना बोलेंगे इंस्टॉलेशन को। और फिर जब पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो जाता है उसको बोलेंगे संस्थापना। अब कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो गया उस ऐप का, तो ये अर्थ है इस शब्द का जो भगवान ने इस्तेमाल किया। तो अब धर्म संस्थापना को उस दृष्टिकोण से समझने की यदि कोशिश करें, हमारे इस्कॉन को भी क्या कहते हैं? संस्था। तो धर्म की स्थापना किसी प्रामाणिक संस्था के द्वारा जब की जाती है। अब यहां पर संस्था का अर्थ ये नहीं केवल कि जैसे आप देखो इस्कॉन की जो संस्था एक बाहरी रूप से हमको क्या दिखाई देती है, मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, और मंदिरों को चलाने के लिए मंदिर के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, है ना। यहां पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, यहां पर भी स्टॉक टेकिंग डिपार्टमेंट है, यहां पर भी सेल्स, सेल्स क्या है? प्रचार का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो बाहरी दृष्टिकोण से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, संस्था के अंदर आपको ये सारे डिपार्टमेंट्स दिखाई देंगे। तो कोई पूछेगा कि भाई आपकी भी जो संस्था है उसके अंदर भी ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी संस्था में भी एम्प्लॉयज हैं, आपकी संस्था में भी पॉलिसीज हैं, सिस्टम्स हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता। आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान भविष्यवाणी कर रहे हैं? क्योंकि ये संस्था जो भी कुछ कर रही है, प्रभुपाद ने जो इसकी स्थापना की, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद ने जब इसकी स्थापना की तो आज हम देखेंगे कि उसके जो सात उद्देश्य प्रभुपाद ने अपने हाथों से लिखे, सेवन गोल्स ऑफ इस्कॉन, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जो सेवन गोल्स हैं, वो सेवन गोल्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर हमको समझ में आएगा कि ये केवल कोई साधारण संस्था नहीं, संस्थापना हो रही है। पूर्ण रूपेण भगवान के धर्म की स्थापना जिसके द्वारा हो, वो केवल संस्था नहीं रह जाती, भगवान जो आज के श्लोक में कह रहे हैं संस्थापना हो जाता है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद ने जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये संस्था का निर्माण किया, इसलिए प्रभुपाद को फाउंडर आचार्य कहा गया है। तो कैसे श्रील प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान श्री कृष्ण के और भगवान श्री कृष्ण की वाणी के भगवद गीता के प्रामाणिक प्रतिनिधि श्री प्रभुपाद कैसे उन्होंने भगवान के उसी मिशन को जो आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, कौन सा मिशन? धर्म संस्थापना का, उसी मिशन को कैसे श्री प्रभुपाद ने इस्कॉन के द्वारा साबित कर बताया या उसे कार्यरत किया और उसे बताया। तो हमें यह भी समझना है, जैसे हमने युगे युगे ये दो जो फ्रेजेस यूज किए भगवान ने, धर्म संस्थापना और युगे युगे, परिस्थिति समय और स्थान के अनुसार, तो प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना करने के लिए कौन सा देश चुना? सबसे पहला प्रश्न यह है कि कौन सा देश चुना। अभी देखो, धर्म की संस्थापना हम तो यही सोचेंगे कि भारत जैसा धार्मिक देश, वहां से शुरुआत प्रभुपाद को करनी चाहिए थी। हां, प्रभुपाद ने यहां से शुरुआत की, लेकिन जो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था कि ये धर्म की संस्थापना तुम्हें अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में जाकर करनी है, तो प्रभुपाद ने अमेरिका चुना। और अमेरिका जाने के लिए प्रभुपाद को इतने सारे समंदर पार कर अच्छा, यदि आप जानते ना हो तो जो बहुत से संप्रदाय हैं, प्रामाणिक हमारे वैष्णव संप्रदाय भी, उनके अंदर एक बहुत उनका कट्टर नियम है कि जो साधु सन्यासी हैं वो कभी समंदर पार कर नहीं जाएंगे। ये उनके ऊपर नियम है, दे विल नेवर क्रॉस द शोर्स ऑफ इंडिया। इफ दे क्रॉस द शोर्स ऑफ इंडिया दे आर कंसिडर्ड टू बी फॉलन सन्यासी। सन्यास धर्म छोड़ना होगा, अगर वो यहां का जो छोर है वो छोड़कर कहीं जाते हैं। अब सोचिए, यहां श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले ये जो नियम है बहुत से प्रामाणिक वैष्णव संप्रदायों का, उसको तोड़ते हुए धर्म की संस्थापना करने के लिए इस जहाज में, जलदूत में प्रभुपाद समंदर को पार किए, अटलांटिक ओशन, जितने हमारे सारे इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक, अपना अरेबियन सी, ये सब को क्रॉस करते हुए, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरेनियन क्रॉस करते हुए पैसिफिक अमेरिका पहुंचे, सात समंदर पार कर जिसको कहते हैं। प्रभुपाद को पहुंचते पहुंचते कुछ 2-2.5 महीने लगे, यही टाइम था, जन्माष्टमी राधाष्टमी का टाइम, यही सितंबर का महीना जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे, सितंबर के महीने। तो धर्म संस्थापना युगे युगे की परिस्थिति के अनुसार प्रभुपाद ने वो धर्म संस्थापना के लिए क्या आवश्यक है उसे किया। तो अभी हम प्रभुपाद के जीवन का एक छोटा सा स्लाइड शो देखेंगे, जिसके अंदर प्रभुपाद ने कुछ ऐसी ऐसी चीजें की जो कि कईयों के धार्मिक प्रिंसिपल के विरुद्ध थी। जैसे कि सात समंदर पार जाना, ये प्रभुपाद ने किया, लेकिन क्यों किया? धर्म की संस्थापना के लिए। फिर एक सन्यासी के रूप में प्रभुपाद ऐसे लोगों के साथ उन्होंने बैठकर संघ किया जो कि कोई यहां का कोई साधु या ब्रज का कोई साधु या बाबा जी कभी वो सपने में भी नहीं सोचते थे कि ऐसे हिप्पियों के बीच में जो शराबी कबाबी नशेड़ी सारे बैठे हुए हैं आसपास, उनके बीच में प्रभुपाद कीर्तन किए, उनको प्रचार किया, उनको अपने हाथों से प्रसाद बनाकर खिलाया, उनका जूठा साफ किया, किस लिए? धर्म संस्थापना। भगवान श्री कृष्ण आज के जो श्लोक में बोल रहे हैं उसे सिद्ध करने के लिए, धर्म संस्थापना के लिए। यहां पर आप देखिए, हम आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे। क्लोज दैट डोर, बाहर जाइए, बाहर जाइए, या तो अंदर रहिए, बाहर जाइए। कैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद के समय, अभी जब धीरे धीरे ये लोग भक्त बन रहे थे, तो ये ऐसे लोग थे कि आप, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसने कभी कृष्ण के विषय में सुना नहीं, भगवद गीता क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, मूर्तियों की पूजा क्या होती है। जैसे एक जगह पर, यहां पे मुझे याद रहा, जगन्नाथ जी दिख रहे हैं चित्र में, तो एक जगह पर जगन्नाथ जी प्रभुपाद ने इंस्टॉल किया। अब जगन्नाथ जी क्या है, बहुत से भारतीयों को मालूम नहीं, इनको क्या पता होगा जगन्नाथ जी कौन है। कितने भारतीय हमारे इस्कॉन के मंदिर में या जगन्नाथ रथ यात्रा कौन है, उनको पता नहीं होता। तो प्रभुपाद ने मंदिर में जगन्नाथ इंस्टॉल किया, और फिर इंस्टॉलेशन के बाद दूसरे दिन प्रभुपाद जब सुबह गए दर्शन लेने के लिए, तो ऑल्टर खाली, भगवान कहां गए। तो प्रभुपाद ने पूछा कि वेर आर द डीटीज, वेर इज जगन्नाथ। तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद वी हैव टेकन हिम फॉर मॉर्निंग वॉक, टुडे इज गुड क्लाइमेट, अच्छा मौसम हो रहा है, हमने सोचा है भगवान को भी थोड़ा, क्या है कल सेरेमनी बहुत लंबा था, रात भर भगवान ऊपर ऑल्टर में, तो थोड़ा उनको सैर कराने के लिए हम सुबह ले गए। एक मंदिर में प्रभुपाद, अब ये लोग सब विदेशी थे, इन्होंने अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी वगैरह लगा कर वो प्रभुपाद को प्रसन्न करना चाहते थे। तो प्रभुपाद एक मंदिर में गए, प्रभुपाद ने देखा वहां पर अच्छा ऑल्टर है, अच्छे से सजा हुआ ऑल्टर, भगवान है ऑल्टर के ऊपर, राधा कृष्ण। तो प्रभुपाद ने दंडवत किया। अब जैसे हम दंडवत करते हैं, प्रभुपाद दंडवत किए, अपने मंत्र उच्चारण कर प्रभुपाद उठे, तो ऑल्टर पर भगवान बदल गए। अब गौर नीताए आ गए, प्रभुपाद ने कहा, अरे मैंने तो राधा कृष्ण को दंडवत किया था, गौर नीताए आ गए। प्रभुपाद ने वापस दंडवत किया, वापस उठे तो वापस बदल गए, ये चल क्या रहा है। तो उन्होंने क्या किया था, रिवॉल्विंग ऑल्टर बना लिया था, जैसे रिवॉल्विंग थिएटर होता है ना, वैसे रिवॉल्विंग ऑल्टर बना लिया था। तो एक तरफ राधा कृष्ण रिवॉल्व होकर, दूसरी तरफ गौर नेता है। तो फिर प्रभुपाद को सिखाना पड़ा कि भाई अर्च्य विग्रह की पूजा किस प्रकार से की जाती है। लेकिन प्रभुपाद ने ये सब कुछ सहन किया और धीरे धीरे इनको सही राह पर लाए कि आज अपने राधा मदन गोपाल जी के इंस्टॉलेशन के लिए अमेरिकन्स आए थे, आपको अगर याद हो तो, अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स आए थे, भक्ति विद्या पूर्ण महाराज, जो अपने पूरे हमारे इस्कॉन के डीटी इंस्टॉलेशन के गुरु हैं, वो जाके जितने भी इस्कॉन के डीटी इंस्टॉलेशन होता है वो और उनका टीम आता है, अमेरिकन वो, और जना निवास प्रभु जो कि एक ब्रिटिशर है। तो यहां पर हमने खुद राधा मदन गोपाल जी के इंस्टॉलेशन के, और ये सब की शुरुआत यहां पर आप देखो, प्रभुपाद ने 1965 में शुरुआत इसकी की, कि इनको स्पून फीडिंग जिसको कहते हैं, कर 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 इनको क्या करवाया, धर्म संस्थापना, ये समझना है हमको। इतना ही नहीं, न केवल, कईयों को लगता होगा कि क्या ये हरे कृष्णा वाले केवल हिप्पियों के साथ, नहीं, प्रभुपाद ने उन हिप्पियों को वैष्णव बनाया, और उन अब हिप्पी जो वैष्णव बन चुके, उनके शिष्य बन चुके, वैदिक संस्कृति का पालन करते हुए, फिर उनकी सहायता से प्रभुपाद ने जो वहां के इंटेलिजेंसिया, जिसको हम कहेंगे जो बुद्धिजीवी साइंटिस्ट स्कॉलर्स, उन सबको प्रभुपाद ने, क्योंकि प्रभुपाद के पास उतना पोटेंशियल था उनको भी प्रचार करने का, लेकिन उस समय उनको वो ऑडियंस कोई मिल नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद ने बड़े बड़े वहां के जो एलीट एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं उनको प्रभुपाद ने प्रचार किया। अब देखिए, बहुत लोग ये प्रश्न पूछते थे कि ये क्या जेट स्वामी है, जेट एज स्वामी, कि बोइंग जेट में ये भ्रमण करते हैं। तो ये क्लासिक क्वेश्चन प्रभुपाद को पूछा गया था। सो यू आर अ सन्यासी, हाउ कम यू आर ट्रैवलिंग इन जेट प्लेन्स? तो प्रभुपाद का मुंह तोड़ जवाब क्या क्या था? प्रभुपाद ने कह दिया, इफ पीपल आर गोइंग टुवर्ड्स हेल एट जेट स्पीड, in order to catch them I have to be on that jet. तो ये छोटी छोटी चीजें हमको समझ में नहीं आ रही हो, क्यों मैं ये स्पेसिफिक फोटोज आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत से जो कट्टरवादी हैं धर्म का पालन करने वाले, उनके लिए बहुत सारी चीजें ये अगेंस्ट की फ्लाइट में, प्लेन में एक सन्यासी साधु। प्रभुपाद ने ये सब कुछ किया, प्रभुपाद को कोई प्लेन में ट्रैवल करने का शौक नहीं था। धर्म संस्थापना, जो भी परिस्थिति स्थान समय के अनुसार धर्म की संस्थापना के लिए आवश्यक, वो प्रभुपाद ने किया। बच्चे, गुरुकुल के बच्चे, पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन के जो गुरुकुल के बच्चे, उनको क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए, बच्चों की परवरिश किस प्रकार से होनी चाहिए, प्रभुपाद एक सन्यासी के रूप में वो भी ट्रेनिंग दिए। इसलिए प्रभुपाद के जो गुरु बंधु वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये अकेला सन्यासी वहां पर गया है, ये कैसे ये सब कुछ कर पा रहा है, जबकि सन्यासी के कितने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। अब आगे की आप स्लाइड देखोगे, यहां पर प्रभुपाद ने शादी करवाई, जो कि एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हो गई प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स के बीच में, कि ये कौन सा सन्यासी साधु वहां पर ये जाकर ये अपने शिष्यों की शादी करवा रहा है। यहां पर आप देखो, ये फोटो है, प्रभुपाद बीच में बैठे हैं और ये सब अमेरिकन कपल्स, तीन कपल्स की प्रभुपाद शादी करा रहे। प्रभुपाद इन कपल्स के लिए इंडिया से कपड़े लेकर आए, वो माताजियों के लिए साड़ी लेकर आए, उनको साड़ी कैसे पहनना है वो भी सिखाया। उनकी शादी के अंदर क्या फीस्ट बनना चाहिए, प्रभुपाद ने वो फीस्ट भी बनाया। फिर पुरोहित बने, यज्ञ किया और उनको बताया कि क्या होता है, फेरे कैसे निकाले जाते हैं, शादी वैदिक एक विवाह क्या होता है। ये सन्यासी का काम नहीं है। कभी आपने भारत में सुना देखा कोई सन्यासी ये सब कुछ शादी का अरेंजमेंट कर रहा है? प्रभुपाद ने ये सब कुछ किया धर्म संस्थापना। टेक्नोलॉजी को यूज किया, जब प्रभुपाद को ये डिक्टाफोन, अब उस समय की ये एडवांस टेक्नोलॉजी थी, 1960s का डिक्टाफोन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी था। तो पहले प्रभुपाद हाथ से लिखा करते थे, ये जो इतनी सारी किताबें आपको आज हम एक वीडियो दिखाएंगे कि ये सारी जो किताबें हम लोग इतनी आसानी से इस्कॉन की पुस्तकें अपने लिए उपलब्ध हैं, इसके पीछे कितनी बड़ी टीम लगी हुई है, या उस जमाने में जब प्रभुपाद के समय कितना वो पूरा बीबीटी का टीम इसके प्रिंटिंग के लिए लगा हुआ। तो प्रभुपाद को, पहले प्रभुपाद हाथ से लिखा करते थे, तो फिर एक डिसाइपल ने देखा कि प्रभुपाद इतनी मेहनत कर रहे हैं, हाथ से सब कुछ लिखना पड़ रहा है, तो उन्होंने प्रभुपाद के लिए ये डिक्टाफोन लाया। प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद आप इसके अंदर केवल बोलो, हम उसको सुन के टाइप करेंगे, आपको खुद लिखने की जरूरत नहीं। क्योंकि प्रभुपाद खुद लिखकर इतने सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स, पांडुलिपि जिसको बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर आए ट्रंक भर भर कर। तो फिर अभी वहां के जो अमेरिकन, उनके तो टेक्नोलॉजी में दिमाग बहुत चलता है, तो उन्होंने ये लेकर आए, तो प्रभुपाद ये डिक्टाफोन यूज किए। जो फिर भी ये सारी चीजें, प्लेन में जाना, डिक्टाफोन यूज करना, ये सब जो ऑर्थोडॉक्स थे उनके अगेंस्ट था। अब यहां पर ये प्रभुपाद के शिष्य, सन्यासी शिष्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, जिनको प्रभुपाद ने कहा कि तुम एक इंस्टीट्यूट चालू करो, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, जहां पर तुम साइंटिस्ट को प्रीचिंग करो, और साइंटिस्ट को प्रीचिंग करने के लिए अगर तुमको सूट में भी जाना पड़े टाई पहनकर, तो तो ये हैं भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ प्रामाणिक साधु सन्यासी रहे, प्रभुपाद के शिष्य, और वो खुद एक साइंटिस्ट थे, अभी तो वो नहीं, गुजर गए वो। तो उन्होंने भक्तिविदान इंस्टीट्यूट चालू किया और प्रभुपाद के आदेश अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार धर्म की संस्थापना करने के लिए साइंटिफिक तरीके से इसको कैसे तुम प्रेजेंट करो, ये प्रभुपाद ने सिखाया। तो ये प्रभुपाद ने पूरे इस्कॉन की स्थापना की 1966 में, इनकॉर्पोरेशन इस्कॉन का जो हुआ, 65 में अमेरिका में गए, 66 में हार्डली प्रभुपाद के कुछ गिने चुने 20-25 कुछ शिष्य होंगे, उस समय प्रभुपाद ने ये 7 गोल्स ऑफ इस्कॉन लिख दिया था, जो आज दिन तक, इतने वर्ष जो बीत चुके हैं, आज दिन तक आप देखो कि ये जो गोल्स हैं ये जानने लायक हैं कि प्रभुपाद ने, प्रभुपाद का विजन क्या था। तो ये होता है भगवान और भगवान के शुद्ध प्रामाणिक प्रतिनिधि का विजन। फर्स्ट गोल ऑफ इस्कॉन, टू सिस्टमैटिकली स्प्रेड स्पिरिचुअल नॉलेज इन द होल सोसाइटी एंड एजुकेट ऑल पीपल इन प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, टू चेक द इम्बैलेंस ऑफ लाइफ वैल्यूज एंड अचीव रियल यूनिटी एंड पीस इन द वर्ल्ड। फर्स्ट गोल ऑफ इस्कॉन। सेकेंड, टू स्प्रेड कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द वे इट इज रिवील्ड इन द भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम। सो कोई नहीं कह सकेगा कि भाई क्या आधार है तुम्हारे धर्म संस्थापना का, आधार क्या है, भगवद गीता एंड श्रीमद भागवतम। टू ब्रिंग टूगेदर मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट एंड लीड देम टू कृष्णा द ओरिजिनल पर्सन, एंड इन दिस वे डेवलप इन देम and the whole humanity the idea that every soul is part and parcel of Krishna. Fourth goal, to teach and support Sankirtan movement, congregational chanting of the holy names of God as it is revealed in the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. To Chaitanya Mahaprabhu, jo ki yuga avatar hain, goals ke andar Prabhupada ne unke teachings ko include kiya. To develop places of pilgrimage related to pastimes of Lord Krishna for the benefit of members and the whole society. इसलिए जब प्रभुपाद incorporation कर रहे थे संस्था का, तो प्रभुपाद ने कहा it should be named International Society for Krishna Consciousness. तो कई disciples ने ये suggestion दिया कि प्रभुपाद, Krishna बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो गॉड कॉन्शियसनेस रखें तो कैसा रहेगा। प्रभुपाद कहे नो, लेट देम आस्क हु इज कृष्णा, व्हेन दे विल रीड और हियर कृष्णा कॉन्शियसनेस, लेट देम आस्क हु इज दिस कृष्णा, एंड देन विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेल देम कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और फाइनली सिक्स्थ गोल, टू एसोसिएट with members for the purpose of teaching more simple and natural way of life. तो प्रभुपाद ने जो 7 goals के अंदर जो इस्कॉन का incorporation किया, उसमें प्रभुपाद दोनों चीज बता रहे हैं कि devotees वो आपस में कैसे रहें, क्या करना है उनको आपस में, और आपस में आकर उनको समाज में क्या देना है उनका योगदान। Finally, to print and spread periodical publications, books and other literature to fulfill above mentioned goals, जो कि प्रभुपाद ने, हम देखते हैं जो प्रभुपाद की पुस्तकें, जो कि unparalleled gift, भगवान का प्रतिनिधि बनकर धर्म की संस्थापना प्रभुपाद ने, जो कहते हैं जिसकी नींव, आधारशिला, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, वो है प्रभुपाद के परपोर्ट्स, प्रभुपाद के बुक्स। तो आज हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे, एक वीडियो जहां ये जो धर्म संस्थापना की रीढ़ की हड्डी प्रभुपाद ने जो ग्रंथ प्रस्तुत किया एज इट इज, उसकी पूरी स्टोरी कि कितनी आसानी से हमको इस्कॉन के ग्रंथ अभी मिल जाते हैं, फिर भी हम पढ़ते नहीं, रात रात भर जगकर प्रभुपाद ने जो इस्कॉन के ग्रंथ उनको ट्रांसलेट किया और उसके पीछे कितने, ये सारे कोई भारतीय उस समय नहीं था, ये वीडियो में आप देखोगे सारे विदेशी, सारे वो अमेरिकन्स, माताजी प्रभु जी सब लगे हुए प्रभुपाद की वाणी को कैसे उन्होंने बुक फॉर्म में उसका पब्लिकेशन कराकर देश विदेश उसको बांटा। तो कैसे प्रभुपाद और प्रभुपाद की पूरी टीम मिलकर धर्म संस्थापना किए परिस्थिति स्थान और समय के अनुसार, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और इस वीडियो के बाद जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इस सब की शुरुआत 66 में प्रभुपाद जब अकेले एक इतना सा ड्रम लेके वो टॉमकिन स्क्वायर पार्क, एक पार्क के अंदर अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक पार्क में इतना सा वो एक, जिसको आप जो ट्रेन में भिखारी ड्रम बजाते हैं ना, उस प्रकार का एक छोटा सा ड्रम लेके प्रभुपाद कीर्तन कर रहे हैं, और कौन कौन वो कीर्तन में समझ भी नहीं रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ अपने अपने तरीके से भाग ले रहे हैं। शुरुआत वो लास्ट वीडियो आपको दिखाएंगे कि फिर आप उसको कंपेयर कर सकते हो कि जो भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में धर्म संस्थापना युगे युगे, वो श्रील प्रभुपाद ने कैसे इस्कॉन के द्वारा सिद्ध किया। हैव द लाइट्स ऑफ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, यस्माद् भरता सर्वात्मा।
5,000 years ago in India, many saints and sages gathered on the banks of the sacred river Ganges. They came from throughout the world to witness the last 7 days in the life of the great devotee, King Pariksit. The king had renounced his fabulous wealth to dedicate his few remaining days to spiritual enlightenment. At that meeting, Sukadeva Goswami, the most exalted sage in the assembly, narrated the pastimes and teachings of Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. He discussed all aspects of knowledge, from the creation of the material universe to the culture of spiritual life, and held the king and sages in rapt attention. His teachings, known as the Bhagavad Purana or Srimad Bhagavatam, were transcribed in the ancient Sanskrit language, and their glories are thus explained in the Bhagavad itself. This Bhagavad Purana is as brilliant as the sun and has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion and knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of this age of Kali shall get light from this Purana. Through the ages, these teachings about Lord Sri Krishna were transmitted intact from spiritual master to disciple. Sripad Madhvacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhu, the Goswamis of Vrindavan, Srila Bhaktivinod Thakur, Sri Gaur Kishor Das Babaji, and in the early 20th century, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who ordered his disciples to preach Krishna consciousness around the world. He especially desired to distribute Krishna conscious literature in the Western countries. His disciple, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, took this order as his very life. In 1966, he founded the International Society for Krishna Consciousness for Worldwide Preaching. Then, for worldwide publishing, he established the Bhaktivedanta Book Trust. Srila Prabhupada himself is the author of all of
them. हमारे लिए उपलब्ध हैं, कितना बड़ा टीमवर्क इसके पीछे गया, और कितने सब लोगों की मेहनत, और ये लोग सब अपने अमेरिकन्स, विदेशी, जो आपने देखा एक एक स्टेप पे क्या क्या उन्होंने प्रभुपाद का जो डिक्टाफोन से ट्रांसक्रिप्ट लेकर पब्लिशिंग तक और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन, और ये श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी आसानी से हमारे लिए उपलब्ध हैं और हम लोग कई बार टाइम नहीं रहता है हमारे पास इसको खोल के पढ़ने का, घर पे पड़ी हुई हैं लेकिन शेल्फ से निकालने के लिए भी, इसलिए मैंने ये वीडियो दिखाया ताकि कम से कम हमें पता लगे कि इसके पीछे कितनी मेहनत गई है और कोई ये साधारण किताबें नहीं जो आज के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं धर्म संस्थापना। अब मैं एक फाइनल वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। ये तो आपने देखा कि प्रभुपाद के शिष्यों ने कितने सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रभुपाद की वाणी को उसी वो सारे धर्म ग्रंथ को प्रस्तुत किया, और इसकी शुरुआत 1966 में यही सब जो इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रभुपाद की इस वाणी को वो आगे बढ़ाए, तो उसकी शुरुआत कहां से हुई, प्रभुपाद को कैसे कौन से स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ा, एक 7 मिनट का छोटा सा वीडियो है उसके अंदर देखने का में समझ में आएगा हमें।
And then we understood that Krishna provides. That was the famous word. Krishna provides. That's why you really felt secure when you were with Prabhupada. Because you felt nothing could hurt you or touch you, and you felt wonderful. You always wanted to be around him because you felt fully protected. That feeling that everything's going to work out when you're with Prabhupada. Because everything did work out. The first dancing was in Tompkins Square Park, myself and Achyutananda. Prabhupada introduced this style of kirtan, which is very, very meditative. You know, when Prabhupada sang in the park, that first time I danced, and Chutananda got up and we danced. As I was dancing, I felt I should dance with the kirtan and I should dance as long as Prabhupada has the kirtan. Not that I should stop dancing and sit down. That would somehow be disrespectful to the Swamiji. So I danced for as long as Prabhupada had the kirtan. And Prabhupada had the kirtan for 3 hours. Non-stop. He was singing. And that's the way Prabhupada had it. Very long kirtans and very meditative. I once asked Srila Prabhupada, what is the best way to sing kirtan? He replied that you sing in such a way that you never get tired. So that the kirtan should be able to go on endlessly. The New York Times, they came to that kirtan and they took a photograph of Achyutananda and myself and Prabhupada sitting there. You see the back of Prabhupada's head and he's holding the bongo drum that he played. The caption was, "The Swami's flock finds ecstasy in the park." Prabhupada said the Times of New York was the most important newspaper in the world. This article, he said, marked the beginning of my movement.
One night I was walking down Second Avenue and I heard the ting, 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 ting. And so I walked over and I followed the sound and it was the Krishna place and there was Prabhupada and they were chanting a mantra. And I had read that chanting mantras was the best kind of meditation. So I thought, well, maybe this is what I'm looking for. So I started to go in, but as I went in, I saw Prabhupada was shaking his head from side to side, like not to come in. So I stopped. But then I saw that he was just moving his head in time with the music. So I went in and sat down and started chanting. And then when Prabhupada spoke, He said, the Supreme Absolute Truth is a person. And when he said that, I knew that I had found my spiritual master. Because I had been reading all these Buddhist books that say you cannot describe the truth. You know, you cannot say it is, you cannot say it is not, you cannot say it both is and is not. You cannot say it neither is nor is not. And they never tell you what the truth is. So here is somebody who told me what the truth was, and it really made sense. So then I started coming regularly. At that time, there was lecture kirtan every Monday, Wednesday, and Friday night. So anyway, after a while, I began to have a little doubt. I thought, well, I can see that the Swami is very honest. He's not cheating. But how do I know he really has knowledge? He could be a very honest man, but also be misled. And while I was thinking this, I didn't say anything to him. But I went to hear him lecture, and he said, I teach only what is in Scripture. So when he said that, then I thought, well, then there's no danger if he only teaches what's in Scripture. So that's how I started coming all the time. And then after a while, some of the guys started to do some kind of a service. And somebody would say, well, I'm doing this for the Swami. Or someone else would say, I'm doing that for the Swami. So I thought, well, I'd better get in on this, because I thought he would maybe gather a few disciples and go off to a mountain cave somewhere and give them the secret teachings, you know. So I didn't want to miss out. So I went up to see Prabhupada. And I said, is there something I can do for you? And he said, yes, you can take notes in class and type them up. So the next day I took notes, but I really didn't know what kind of format to write them up with, so I tried something. And I showed it to Prabhupada, and then Prabhupada showed me what he was working on, and it was the essay, Who is Crazy? So then I knew that he wanted me to type the notes up in essay form. And Prabhupada said, and we will one day put all these essays together in a book and call it Practical Theology.
I was cooking for Prabhupada. Then it occurred to me that it would be nice to start a Sunday feast program. I explained to Prabhupada that in this country, people usually gather in their families together on Sunday and have a meal together. So I thought it would be a nice thing to have a love feast on Sunday, when we could ask all the hippies and others who wanted to come and have a Krishna conscious feast. Prabhupada said, oh, that is a good idea. And that's the beginning of the love feast. We used to have the place packed every week. Every bit of prasad would be gobbled up. I cooked, Prabhupada cooked, Achyutananda cooked. We handed out flyers. I remember the first flyer, stay high forever. No more coming down. Practice Krishna consciousness.
How familiar these faces are. They are etched in my memory. And also I was very touched, in part because I am aware that this is important for the devotees. And being able to give the film to the movement is more of a gift to us, that we had something of value that was appreciated. And that was very rewarding to us. So it's matchless gifts for us.
जय श्री प्रभुपाद की। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा क्या प्रभुपाद किन के बीच में बैठकर कीर्तन, अपने शुद्ध कीर्तन से प्रभुपाद ने इन सबको एक साथ लाया। एक साथ लाकर फिर प्रभुपाद जो धर्म के संस्थापना करना चाह रहे थे अपने ग्रंथों के द्वारा वो करवाया। मंदिरों की स्थापना, अर्च विग्रहों की स्थापना, और आज हम देखते हैं कि इस्कॉन इतना बढ़ गया है। और इसकी शुरुआत हुई वो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, जहां प्रभुपाद अकेले वो बोंगो ड्रम लेकर बजा रहे हैं। तो इसलिए जो आज के श्लोक में भगवान कहे, धर्म संस्थापना युगे युगे, कि इस युग में भी भगवान श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के जो प्रतिनिधि हैं, प्रामाणिक जो आचार्य हैं, उनके द्वारा धर्म की संस्थापना कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
और अगले बुधवार को इसी अध्याय का ये प्रसिद्ध श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वित्ति तत्वता, इसकी चर्चा हम करेंगे. जय श्री प्रभुपाद की.
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. कुछ सोच